परम पूज्य गुरुदेव श्री नियम सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि हमें धर्मोपदेश का लाभ हो। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी।
ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आर ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नो मीरिदे मत्तु मार दिव्य ध्वनियो लोक हितव माडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ, ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ। ಪಂಚ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಜ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಕಿಂಚನ್ಯ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಅಂತರಂಗ ಔರ್ बहिरंग 24 प्रकार के परिग्रह को त्याग कर खाली हो जाने का नाम उत्तम आकिंचन्य धर्म है। ये दश धर्म व्यवहार धर्म कहलाते हैं। ये निश्चय की ओर ले जाने वाले धर्म हैं। आत्मा को आत्मा में प्रतिष्ठित करने के ये साधन कहलाते। व्यवहार ब्रह्मचर्य भी निश्चय का ही साधन है। व्यवहार ब्रह्मचर्य में आत्मा की चर्चा है, आत्मानुभूति नहीं। इसकी चर्चा कल है, आज अकिंचन्य की चर्चा है। जैन धर्म त्याग धर्म है। इस धर्म में त्याग तब तक किया जाता है जब तक व्यक्ति पूर्णतः दिगंबर न बन जाए, तब तक त्याग किया जाता है। 55 किलो का वजन उतारे बिना व्यक्ति दिगंबर बनकर अकिंचन्य धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता। खाली होने का नाम धर्म है। खाली होने का अभ्यास हमें सतत करना है। धर्म की परिभाषा ही ऐसी है, हम क्या कर सकते। जीव अपने मोहवश यह सोचता है खाली होना कठिन है, त्याग करना कठिन है। त्याग से वह घबराता है, लेकिन त्याग से घबराने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं? त्याग ही हमें बचाने वाला है। इसलिए जो बचाने वाला है उससे घबराना चाहिए, या जो बचा नहीं सकता उससे घबराना चाहिए? जो बचा नहीं सकता उससे हमें घबराना चाहिए। हमको जो बचाने की ओर ले जा रहा है उससे कभी हमें घबराना नहीं चाहिए। भ्यूनका संयम धर्म त्याग धर्म धारण करा। गुरुओं ने भी हम सबको साहस दिया है, बल दिया है, एक तरह से अंगुली पकड़कर ऊपर उठाने का प्रयत्न किया है। जब गुरु साथ में हो, गुरु के वचन साथ हो, तो गुरु साथ होने जैसा ही है। गुरु अलग नहीं है और गुरु के वचन अलग नहीं है। गुरु के वचनों को हमें धारण करना है, उनको धारण करना है, और धारण करके हमें घबराना नहीं है। घबराने वाले कभी भी त्याग धर्म की ओर आ नहीं सकते, और शायद अंतिम समय में भी गुरुओं को ये कहना पड़ा, लोग घबराते होंगे, लोग डरते होंगे, लोग सोच में पड़ते होंगे, इसलिए कहना पड़ा भ्यू नका संयम धारण करा। काय करा? संयम धारण करा। संयम जीवन में जब तक नहीं आता तब तक मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, ये तीनों दोष आत्मा के अनादिकालीन दोष हैं, ये जा नहीं सकते, ये घर के हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं, सतत हमारे लिए दुख दे रहे हैं, हमको इनका ही ज्ञान नहीं है। ये कैसे हैं यही हमारे लिए पता नहीं है। मिथ्या तो क्या है हम नहीं जानते, अज्ञान क्या है इसको भी नहीं जानते, असंयम क्या है इसको भी नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि वर्तमान में कुछ छूट रहा हो और उससे हमारे लिए कोई संकट क्षण आने वाला हो सकता है ऐसा लग रहा हो तो हम उस वक्त घबराए बिना रह नहीं सकते। सामने रहने वाले जिस पदार्थ से हमें सुख मिलता है वह छूटते समय घबराहट होता है, यही छूट जाए तो मैं और क्या कर सकता हूं, ये तो सुख का साधन है। यह सुख का साधन छूट जाए तो मैं कहां जाऊं, क्या करूं, क्या दुख भोगूं, संकट की अनुभूति करूं, अनेकों अनेक विचार आने लगते। ये विचार कब तक आते हैं, जब तक कि हमारे लिए मिथ्या तो अज्ञान और असंयम का सही पहचान न हो, हमें भय लगेगा त्याग धर्म से। किंतु इनका सही पहचान हो जाए तो फिर त्याग धर्म से हमें भय उत्पन्न नहीं होगा। गुरुओं ने भी संयम धारण किया, संयम धारण करने के बाद उन्होंने सुख की अनुभूति की क्या दुख की अनुभूति की? सुख की अनुभूति की, लेकिन उनको देख देख करके लोग मन में दुखी होते हैं, अयो बेचारे कितना कष्ट सहन कर रहे हैं, इनके जीवन से तो हमारा जीवन बहुत सुखमय है, ये ऐसे संकट में क्यों पड़ गए। सारी दुनिया एक रास्ते पर चल रही है और ये दुनिया के रास्ते को ही छोड़ करके अलग ही अपना रास्ता निकाल कर उस पर चल रहे हैं। इनको इसमें कौन सा लाभ है समझ में नहीं आता, हमको तो ये नहीं चाहिए। गुरुओं ने जिस मार्ग को चुना उस मार्ग से कौन घबराता है, अज्ञानी या ज्ञानी, समझदार या ना समझ, विवेकी या अविवेकी। हमारे पास विवेक नहीं है, सच्चा सुख किसमें है और सच्चा दुख, दुख भी सच्चा होता है, सच्चा दुख किसमें है, असली दुख किसमें है, इसका ज्ञान नहीं होने से हमारे पास तत्संबंधी विवेक भी नहीं है। इसलिए हम डरते रहते हैं और डरने वालों को उपदेश देते हैं गुरु, भ्यू नका पावानो संयम धारण करा। वो कहते कहते चले गए लेकिन हम डरते डरते यहीं बैठ गए। संयम धारण करने के लिए जो आत्मा जो जीव डरता है वह आत्मा वस्तुतः धर्म का ज्ञाता नहीं हो सकता, वह ज्ञानी कहला नहीं सकता। हमको दो तरह के धर्म समझने हैं, एक व्यवहार धर्म और एक निश्चय धर्म। व्यवहार धर्म की उत्पत्ति के लिए बाधक तीन हैं। व्यवहार धर्म यदि पाना चाहते हैं, ये दश धर्म उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य, इन धर्मों को यदि आप पाना चाहते हैं तो तीन का चिंतन मनन सतत करेंगे। मिथ्या तो क्या है, उसका स्वरूप क्या, मिथ्या तो हमारे जीवन में किस तरह से दुख देता है, मिथ्यात्व से आत्मा को किस प्रकार से भविष्य में हानि हो सकती है, मिथ्यात्व के उदय में आज तक आत्मा ने क्या क्या कष्ट उठाए हैं, कितने कितने भवों में भ्रमण करते हुए कैसे कैसे जन्म मरण किया है, इसका चिंतन मनन मिथ्यात्व विषय को लेकर के होना चाहिए। क्या आप करेंगे? हम इसलिए आपको प्रेरणा देकर के ऊपर उठाना चाहते हैं क्योंकि गुरुओं ने बड़ी जवाबदारी सौंप करके वो चले गए, भ्यू न का कहा, आप डर रहे हैं, देख करके मुझे दया आ रही है। और दया के कारण से ही साधु के मुखारविंद से उपदेश के वचन खिरते। जिसमें दया है वही पर जीवों को उपकार कर सकता है, जिनके पास दया है वही उपकार करेगा, दया न हो तो उपकार नहीं हो सकता था। वो कह करके चले गए और हमको दया करनी पड़ रही, समय देना पड़ रहा है, उपदेश देना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है और तत्व ज्ञान कराना पड़ रहा है, प्रेरणा देना पड़ रहा है, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम के संबंध में विचार करो। इन तीनों ने मिलकर के आत्मा को किस तरह से सताया है, दुख दिया है, किस तरह से 84 लाख योनियों में जन्म मरण करने के लिए ये कारण बने हैं तीनों, इस संबंध में बहुत चिंतन करना चाहिए। यदि आप चिंतन करेंगे तो अवश्य भय दूर हो जाएगा। करेंगे चिंतन? करेंगे। अब हम तो इतना ही कह करके चल रहे हैं, अपने बाद आने वाले और आपको समझाएंगे। दिगंबर मुद्रा को धारण करना यह पुरुषार्थ के बिना संभव नहीं। समय आ जाएगा, काल लब्धि आ जाएगी और हमारा अपने आप स्वाभाविक रूप से उद्धार हो जाएगा, ऑटोमेटिक। वो क्या मशीन है, ऑटोमेटिक शुरू हो जाए। मशीन भी ऑटोमेटिक शुरू नहीं हो सकती, उसको भी स्विच लगा करके रखना पड़ता है। आप 4 बजे उठना चाहते हैं सुबह और मोबाइल में समय फिक्स करके रख देते हैं, ऑटोमेटिक उठाता है वो। तो ऐसा कोई स्विच है क्या, जिस दिन हम दिगंबर दीक्षा लेने वाले हैं उस काल को यहां पर फिक्स करके रखें, पहले से ही फिक्स करके रखें और हमको समय पर जगा दें? वो हो सकता है? नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग तो ऐसा मार्ग है, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। यदि फिक्स करके भी रखोगे काल को, नहीं मैं 1 साल बाद दिगंबर दीक्षा लेऊंगा, सेट करो मोबाइल में डेट, उस दिन घंटी बज जाना है मोबाइल, मैं जग जाऊंगा, उस दिन दीक्षा के लिए रवाना हो जाऊंगा। मशीन जगा सकती है, लेकिन जगने वाला ही नहीं रहे तो उस समय क्या करेंगे? तो काल लब्धि हमारे लिए कुछ भी उपकार करने वाली नहीं है, काल लब्धि के पीछे बैठना नहीं है। पुरुषार्थ हमारा आद्य कर्तव्य है, प्रमुख कर्तव्य है। सबसे पहले हमारे विचार पुरुषार्थ की ओर होना चाहिए। इन तीन के संबंध में ही पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कहाँ करना है? आत्मा में करना है, आत्मा के द्वारा करना है, आत्मा को उठाने के लिए करना है, आत्मा का ही चिंतन है, आत्मा में करना है और तीन का करना है। सबसे प्रथम मिथ्यात्व का चिंतन करना है, फिर अज्ञान का चिंतन करना है, फिर असंयम का चिंतन करना है। इन तीनों का स्वरूप हम समझे ताकि चिंतन सम्यक प्रकार से हम कर सके। मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है? मिथ्यात्व, 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 मिथ्यात्व कहते तो हैं, लेकिन इसका स्वरूप क्या है? मोक्ष मार्ग को छोड़कर अन्य जो मार्ग है उस पर विश्वास करना और इस पर संदेह करना, मोक्ष मार्ग पर। मोक्ष मार्ग पर संदेह होता है, मोक्ष मार्ग को देखकर भय होता है, मोक्ष मार्ग को विचार करके सुन करके हमारे लिए मन मन का बल मनोबल, आत्मा का बल आत्मबल कमजोर पड़ जाता है, कमजोर। ये जब तक रहेगा तब तक मिथ्या तो जाने वाला नहीं। आत्मा के बल को सबल बनाना पड़ेगा, मनोबल को भी सबल बनाना पड़ेगा, इन दोनों बलों को साथ लेकर के सम्यक्तु धारण करने से घबराना नहीं। ये बल साथ देंगे, आत्मा सो मैं हूं, आत्मा मेरी है, मेरे पास अनंत शक्ति है, इस शक्ति का मैंने आज तक प्रयोग नहीं किया, धर्म के क्षेत्र में उस शक्ति का हमने उस शक्ति की उपेक्षा की, प्रयोग नहीं किया, उस शक्ति का दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया। जब संकल्प करने का, पुरुषार्थ करने का संकल्प होता है, जब पुरुषार्थ करना ही है ऐसा संकल्प लेकर के आप बैठ जाते हैं, तो इन दोनों शक्तियों का सदुपयोग होना प्रारंभ हो जाएगा। कौन से दो शक्ति? आत्मबल और मनोबल। मोक्ष मार्ग में वचन बल की कोई जरूरत नहीं। वचन बल हो या न हो, हम निरक्षरी हों तो भी चलेगा, निरक्षरी लोगों को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई है, हो सकती है, घबराने की जरूरत नहीं। हमारे पास अज्ञान है, अभी तो हम कुछ भी नहीं जानते, कैसे एकाएक ही मोक्ष मार्ग पर बढ़े, ऐसा विचार नहीं करना है। निरक्षरी भी आगे बढ़ता है, जिसके पास वचन बल अधिक है ही नहीं, एक आत्मबल पर और मनोबल पर वह आगे बढ़ता है, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये दशो धर्म उसके जीवन में प्रकट हो सकते हैं, दशो धर्मों का साक्षात्कार हो सकता है, दशो धर्मों की अनुभूति हो सकती है। और एक बार पुरुषार्थ करके हम यदि इन दस धर्मों की अनुभूति को एक क्षण भर भी करेंगे, तो आत्मा का बल पहले से अनंत गुना बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ ही जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए गुरु लोगों ने इतना साहस दे दिया, भिहू न का संयम धारण करा, काय कठिनाई नहीं है। अब उनका अनंत बल बढ़ गया है, पहले उनकी आत्मा भी इन तीन दोषों से युक्त थी, अनादिकाल से। हम कौन शुद्ध हैं? हम में से कोई शुद्ध है? अनादिकाल से सभी अशुद्ध पर्याय की ही हम अनुभूति कर रहे हैं। हमको शुद्ध बनना है, हमको बुद्ध बनना है, गौतम बुद्ध नहीं, आत्म बुद्ध, आत्मा को जानने वाला, आत्मा में जागृत पुरुष, जागृत आत्मा, ऐसी दशा को प्राप्त करना है। क्या यह दशा इस पर्याय में जीते जी हमको प्रकट हो सकती है या नहीं? हो सकती। तीन दोष हैं, एक दोष छोड़ोगे तो एक गुण प्रकट होगा, और गिफ्ट में फ्री में एक और साथ मिलेगा। वो क्या? वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हमारे लिए मिल रहा है। वह भी रत्न है, जो एक रत्न को धारण करता है, एक रत्न को खरीदता है, तो खरीदते समय एक रत्न को फ्री में दिया जाता है। मोक्ष मार्ग कितना उदार है, संसारी प्राणियों के ऊपर मोक्ष मार्ग कितनी दया करता है, कितना उपकार करता है और कितना खुश कर देता है। देखो तो एक खरीदने आए और दो लेके गए, इस खुशी में ही हमें आगे बढ़ जाना चाहिए और यह खुशी हमारे लिए नहीं हो पाई तो फिर ना समझ ऐसे ही रहेंगे। एक दोष हटाओ, कैसे हटाओ, अन्य मार्ग मेरे लिए सुखदायी नहीं है, कोई माता पिता मेरे लिए सुखदायी नहीं है, धर्म को छोड़कर कोई घर वाले परिवार वाले मित्र बंधु वर्ग कोई भी मेरे लिए शरण नहीं है। एकत्व भावना का चिंतन करो, यहां पर आत्म कल्याण के मार्ग पर निकलते समय सबको अकेला होना पड़ता है, अकेले। चाहे आप सम्यक दर्शन धारण कर लो, चाहे चारित्र धारण कर लो, दोनों धर्म अकेले में ही प्राप्त होते हैं। धर्म धारण करते समय या धारण करना है उससे पहले आप ये चिंतन मत करो कि मैं धारण करूंगा तो कुछ दूसरा कोई करेगा या नहीं, और नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा। तो अकेले नहीं हो, द्वंद्व में हो। जब तक मन का यह द्वंद्व चलता रहेगा तब तक धर्म को धारण करने का साहस आप नहीं कर सकेंगे। अकेले हो जाओ, अकेले हो करके ही चिंतन करो और निकलते समय में भी मैं अकेला ही निकल रहा हूं, मुझे पर की कोई चिंता नहीं, मेरे साथ कोई आता है नहीं आता है, मेरे सामने कोई है नहीं है, ऐसा मैं विचार नहीं करूंगा। करना तो पड़ेगा, आज करो या कल करो, करना यही है। कब तक भटकोगे, कब तक विचार में अटकोगे? विचार में ही अटकना हो रहा है, ये अटकना कब तक? ये अटक ऐसा नाटक ये कब तक चलेगा? संसार सारा असार है, संसारी प्राणी सारे दुखी हैं, ये सुख के बारे में चिंतन नहीं कर पाएंगे। मुझे यह ज्ञान हुआ है तो मेरे लिए मुझे ही चिंतन करना पड़ेगा, किसी की प्रतीक्षा यहां हानिकारक है। जब तक दूसरे की प्रतीक्षा, दूसरे पर डिपेंड होकर के धर्म के संबंध में हम सोचते हैं, आत्मा निरीह नहीं हो पाती, आत्मा अकेली नहीं हो पाती और हमारा आत्मबल मनोबल उस समय बढ़ जाता है जब तक हम अकेले नहीं हो पाते। दूसरे में जा रहा है वह बल, वह मनोबल, वह आत्मबल बिखर रहा है, बिखरते हुए इस बल को एकत्रित करके एक जगह ठहराना, एकत्व भावना की उपलब्धि करना, एकत्व भावना को प्राप्त करके उस भावना को पुष्ट बनाना, ये वैराग्य के काल में परम आवश्यक होता है। वैराग्य को पुष्ट करना चाहते हैं तो ऐसा करो, मैं अकेला हूं, एकदम पुष्ट हो जाएगा। जब हम सामायिक करते हैं, सामायिक करना ही है, तो सामायिक करने से पहले मन को इधर उधर भटकता हुआ मन को यहां ठहराना पड़ता है कि कहीं भी चला जाए फिर भी हमारा सामायिक निर्विघ्न होता रहेगा, ऐसा है। आत्मा में आत्मबल है, आत्मबल के साथ मनोबल का सहारा लेकर हम ध्यान में उतर जाते हैं तो सामायिक हमारा सक्सेस हो जाता है। मनोबल को भी उधर इधर नहीं छोड़ना और आत्मबल को भी इधर उधर नहीं छोड़ना, इन दोनों का सदुपयोग करना। जब ये एक जगह ठहर जाएंगे तो फिर देखो कितना आनंद आएगा, एकाएकी आपको प्रकाश छा जाएगा पुरुषार्थ के रास्ते पर। एकाएकी आंखों के सामने इतना प्रकाश आएगा कि अरे मैं क्या हूं, क्या सोच रहा था और क्या हो गया, बहुत बड़ा परिवर्तन मेरे जीवन में आया, ऐसी अनुभूति होगी। कब? दोनों को एक बनाएंगे तो, आत्मबल को और मनोबल को एक बनाएंगे तो ऐसा लगेगा मैं कहां भटक रहा था, क्या चिंतन कर रहा था, ये सब उल्टा सीधा विचार ठीक नहीं था, ऐसा कह करके आप अकेले हो जाएंगे। आत्मा भी साथ देगा और मन भी साथ देगा। आत्मा की ऊर्जा को और मन की ऊर्जा को आप समेट लो, समेटने का प्रयत्न करो, फिर पुरुषार्थ में लग जाओ। मिथ्या तो हटने में देरी नहीं लगती। ये दोनों बल जहां एक जगह केंद्रित हो गए, एक कांच होता है उसको कौन सा कांच बोलते जो जलता, हाथ जलाता है, भिंग, भिंग कांच, सूर्य प्रकाश में धूप में जाकर के उसको ऊपर उठाएंगे और उस पॉइंट पर जहां नीचे पॉइंट पड़ रहा है वो केंद्रित हो जाए, बिखरे ना, बड़ा ना रहे, छोटा करते आओ, समेटो, समेटो किरण को, प्रकाश को, एक बिंदु पर आ जाए, क्या हो जाएगा? हाँ, भिंग तो ठंडा ही रहता है, उसको फ्रिज में बर्फ में रख करके ले आओ, वो स्वयं तो ठंडा रहेगा, शांत रहेगा, प्रशांत रहेगा, स्पर्श करोगे तो आनंद की अनुभूति होगी, कितना शांत है, कितना ठंडा है, ये महसूस होगा। लेकिन आप उसको एक बिंदु पर ठहराते हैं, ऊपर उठाते उठाते तो वह नीचे को जलाता है और ऊपर को ठंडा पहुंचाता है। आपका हाथ नहीं जलेगा, हाथ में पकड़ा है तो वो हाथ जलने वाला नहीं, वो स्वयं ठंडा रहता है और नीचे के वस्तु को वह जला देता है। ठीक इसी तरह से आत्मा में जो मिथ्यात्व नामक कर्म है वह कर्म जड़ वस्तु है, दर्शन मोहनी, दर्शन मोहनी को आप जला सकते, भस्म कर सकते। तुम श्रावक हो तो भी भस्म कर सकते, मुनि हो तो, मुनि तो मुनि हैं, भस्म करके ही आए हैं। श्रावक दशा में क्या हमारे लिए क्षायिक दंश सम्यक दर्शन नहीं हो सकता? हो सकता है। क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता? हो सकता है। उपशम सम्यक दर्शन नहीं हो सकता? हो सकता है। श्रावक अवस्था में तीनों सम्यक तो हैं। उपशम सम्यक दर्शन में दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी अनंतानुबंधी को जलाने की शक्ति नहीं है, दबाने की शक्ति है। इसका मतलब ये हो गया कि उसकी जलाने की जो ऊर्जा है, ताकत है, शक्ति है, वो ऊर्जा बिखरी हुई है। उपशम सम्यक दर्शन के अंदर और क्षायोपशम सम्यक दर्शन के अंदर उसमें भी बिखरी हुई है, थोड़ा सा एकाग्र और हो गया है, किंतु इससे भी ज्यादा एकाग्र करेंगे, करते ही जाएंगे, क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन के बाद खाली बैठना नहीं है, आपको तो क्षायोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। क्षायोपशम सम्यक दर्शन भी प्राप्त करके खाली नहीं बैठना है, आपको तो क्षायिक बनाना है, और उपशम सम्यक्तु के काल में, क्षायोपशमिक सम्यक्तु के काल में आप क्या करते हैं? पुरुषार्थ कुछ नहीं, उस भिंग को ऊपर उठाते रहते हैं, जब तक वह बिंदु पर आ न जाए तब तक ऊपर उठाते रहते हैं। उपशम सम्यक दर्शन के अंदर और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन के अंदर दर्शन मोहिनी के तीन प्रकृति को और चारित्र मोहिनी के चार प्रकृतियों को जलाने की क्षमता नहीं है। क्यों? ऊर्जा बिखरी हुई है, ऊर्जा बिखर रही है। अब क्षायोपशम सम्यक दृष्टि श्रावक जब क्षायिक सम्यक दर्शन के सन्मुख हो जाएगा, वो उस वक्त केवली श्रुत केवली के पादमूल में रहता है, वहां गए बिना क्षायिक नहीं बना सकता। वज्रवृषभ नारा सहन वाला रहता है श्रावक, केवली के पादमूल में या श्रुत केवली के पादमूल के बिना वह क्षायिक नहीं बन सकता। मतलब ये हो गया, सत्संग में भी कुछ हमारे लिए बल की प्राप्ति होती है, सत्संग भी हमारे लिए बल प्रदान करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कैसे भाई, फिर अकेला एक द्रव्य सब कुछ कर सकता है, तो केवली श्रुत केवली के पादमूल में क्यों जा रहे हो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता, मिथ्या विचार है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता ऐसा नहीं, कर सकता है, इसमें अनेकांतता है, अनेकांतता है। कथनचित कुछ कर सकता है, कथनचित कुछ नहीं कर सकता है, इसमें एकांतपना नहीं है। सिद्ध परमेष्टि को कोई भी अन्य द्रव्य उनको उपकार और अपकार नहीं कर सकता, पर संसारी प्राणी को कोई दूसरा द्रव्य दूसरा निमित्त कुछ कर सकेगा कि नहीं? अवश्य कर सकेगा, किंतु हमारे लिए अकिंचन्य होना पड़ता है। अकिंचन्य का तात्पर्य मेरा कुछ नहीं, मैं खाली हूं, धर्म के लिए समर्पित हूं, धर्म की उपलब्धि मेरे लिए हो, इसलिए मैं सबसे खाली हो गया हूं, अकेला निकल रहा हूं। प्राप्त करते समय अकेले रहोगे, बाहर में सहयोग देने वाले सहयोग के रूप में होते हैं, लेकिन जब सम्यक दर्शन क्षायिक प्राप्त हो रहा है, वह आत्मा ही प्राप्त कर रहा है, या और कोई ये लो ये लो ये लो, आत्मा ही प्राप्त कर रहा है, आत्मा ही अकेला है। व्यवहार सम्यक दर्शन दो प्रकार के सम्यक दर्शन, एक उपशम और एक क्षायोपशम, ये दो प्रकार के सम्यक दर्शन केवली श्रुत केवली के पाद मूल के बिना अकेले में भी हो सकते, अकेले में, पर क्षायिक सम्यक दर्शन अकेले में कभी नहीं होगा। अकेले में कैसे? जाति स्मरण से। जिन बिंब दर्शन भी तो जिन बिंब दर्शन है, बाहर जाना पड़ता है। जाति स्मरण में कोई अपने पास वर्तमान में होता नहीं, और पूर्व भव के हमारे संस्कार होते हैं, संस्कार याद आते हैं, याद आते आते विशुद्धि बढ़ती है, पंच लब्धियां उत्पन्न होती हैं, करण लब्धि में पहुंच गए, और जाति स्मरण को निमित्त बना करके अधकरण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, तीन करण परिणामों को करके हम क्षायिक सम्यक दर्शन में ढल जाते। क्षायिक, क्षायिक प्राप्त करते समय में भी लब्धियां हैं, और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन में भी लब्धियां। ये लब्धियां क्या है? लब्धि यानी क्या? आत्मा के वो विशुद्ध परिणाम, जिन परिणामों के माध्यम से, जिस विशुद्धि के माध्यम से हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं, उसको लब्धि कहा जाता है। लब्धि यानी प्राप्ति। कैसे परिणामों की प्राप्ति? जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करा सके, ऐसी प्राप्ति। तो देखो, दो प्रकार के सम्यक दर्शन, उपशम सम्यक दर्शन और क्षायोपशम सम्यक दर्शन, ये दोनों प्राप्त करने के लिए कोई केवली भगवान, श्रुत केवली आदि नहीं चाहिए। आप नरक में भी हैं तो दो सम्यक दर्शन ये प्राप्त हो सकते हैं। यदि देवगति में भी है आपकी आत्मा तो वहां पर भी ये दोनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं। त्रिरंज गति में भी है तो वहां पर भी दोनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं। मनुष्य हैं तो कोई समोशरण में या श्रुत केवली के पास हो ना हो, ये दोनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं। लेकिन उपशम के बाद जब आप क्षायोपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं तो ये प्राप्त करने का एक क्रम है। पहला जो सम्यक दर्शन आपको होगा वो उपशम ही होगा, इसके बाद क्षायोपशम सम्यक दर्शन होगा, और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के बिना क्षायिक सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। तो क्षायोपशम सम्यक दर्शन के उपरांत क्षायिक सम्यक दर्शन होगा, लेकिन क्षायोपशम से क्षायिक बनाते समय अवश्य आप केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में होते हैं, या तो आप स्वयं श्रुत केवली रहते। यदि स्वयं ही श्रुत केवली हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपका पादमूल आपके लिए पर्याप्त, आपका पादमूल आपके लिए पर्याप्त है। यानी कि अर्थ ये निकलता है कि श्रुत केवली या केवली होना कितना आवश्यक है, क्योंकि श्रुत केवली के बिना ये सात प्रकृतियां क्षय को प्राप्त नहीं होती, उनके सानिध्य में जाने पर ही वह विशुद्धि बन सकती है। ये पर निमित्त है, ये पर द्रव्य का निमित्त आत्म द्रव्य के लिए है। पर आत्म द्रव्य स्व आत्म द्रव्य के लिए कुछ ना कुछ करता है, कुछ ना कुछ करता है, कुछ भी नहीं करता ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ करता तो है, इसलिए क्षायिक सम्यक दर्शन हो रहा है। क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना क्षायिक चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकते, और क्षायिक चारित्र को प्राप्त किए बिना ज्ञान को क्षायिक नहीं बना सकते। देखो ये कैसी स्टेप है, कैसी सीढ़ियां हैं, क्या क्या करना पड़ेगा, कैसा कैसा सोचना पड़ेगा, कैसा कैसा चिंतन करना पड़ेगा। क्या बताया? सम्यक दर्शन जब तक क्षायिक नहीं बनेगा, आपका चारित्र क्षायिक नहीं बन सकता, क्षायोपशमिक ही रहेगा, और उस क्षायोपशमिक चारित्र को क्षायिक में ढालना चाहते हैं तो उससे पहले सम्यक्त को क्षायिक बनाओ। नहीं बनाते हैं तो उपशम सम्यक्तो के साथ आप उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। उपशम श्रेणी चढ़ते समय उपशम चारित्र प्रकट होता है। उपशम श्रेणी चढ़ने वाले मुनि महाराज को उपशम चारित्र रहता है और क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले मुनि महाराज को क्षायिक चारित्र होता है। और जिसके पास क्षायिक चारित्र होता है उसके पास नियम से क्षायिक सम्यक्तो तो होता ही होता है, लेकिन क्षायिक ज्ञान नहीं रहता। ज्ञान तो क्षायोपशमिक है, और क्षायिक ज्ञान की प्राप्ति किस गुणस्थान में जाकर के होती है? 13वें गुणस्थान में जाने के बाद होती है। देखो आप, महंगा कौन है? ज्ञान महंगा है, सम्यक दर्शन सस्ता है, उससे ज्यादा महंगा चारित्र है, और उससे महंगा पड़ गया ज्ञान। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ये दोनों क्षायिक हो, इसकी जरूरत हमारे जीवन में क्यों है? क्षायिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और क्षायिक ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होता, हम संसार से छुटकारा नहीं पा सकते। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव को भी बताया है कि वह भी चार भव तक संसार में रह सकता है, पर क्षायिक ज्ञानी को यह नहीं बताया। क्षायिक ज्ञानी तो उसी भव से मोक्ष जाता है। क्षायिक चारित्रवान को क्या समझें? तो क्षायिक चारित्रवान को ये समझें, वह नियम से अंतर मुहूर्त के भीतर क्षायिक क्षायोपशमिक ज्ञान को क्षायिक बना ही डालेगा। केवल अंतर मुहूर्त के भीतर क्षायिक बना डालेगा, क्षायिक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये क्षायिक चारित्र की महिमा है। क्षायिक ज्ञान आने से पहले, अंतर मुहूर्त पहले ही आपको सूचना देता है। क्षायिक चारित्र ये सूचना देता है आपको, अंतर मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान होने वाला है। भ्यू नका, जरा शुक्ल ध्यान धारण करा। प्रथम शुक्ल ध्यान, द्वितीय शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान को धारण करने के लिए साहस दिलाता है क्षायिक चारित्र। और यह क्षायिक चारित्र इतना अद्भुत चारित्र है, जैसे सूरज उगने से पहले प्रकाश छा जाता है भूमि पर, अभी सूरज उगा नहीं, लालिमा छा गई है पूर्व दिशा में, ऐसी लालिमा क्या सूचना दे रही है? सूरज निश्चित उगने वाला है, अब अंतर्मुहूर्त बचा है, ये लालिमा सूचना दे रही है। और केवल ज्ञान का सूरज उगने वाला है, इसकी सूचना देने वाला, लालिमा का कार्य करने वाला कौन है? वहां क्षायिक चारित्र है। लेकिन सम्यक दर्शन वो ऐसी सूचना नहीं देता, अंतर्मुहूर्त की सूचना नहीं देता। अभी आपको चार भव का अंधेरा है, चार भव तक अंधेरा है, फिर इसके बाद लालिमा आएगी। पहले क्षायिक चारित्र होगा, और इसके बाद फिर सूरज उगेगा, केवल ज्ञान का सूरज। केवल ज्ञान को ही क्षायिक माना है। उसके पहले पहले संसारी प्राणी के पास जो भी ज्ञान रहते हैं वे क्षायोपशमिक रहते। श्रुतज्ञान क्षायोपशमिक, मतिज्ञान क्षायोपशमिक, अवधि मनः परे ज्ञान क्षायोपशमिक, और कुज्ञान भी हो तो भी क्षायोपशमिक। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, तीनों क्षायोपशमिक। आज अकिंचन्य धर्म है। अकिंचन्य की उपलब्धि किस लिए? अकिंचन्य धर्म भी कितना सस्ता है? बहुत सस्ता है। चाहिए आपको नाश्ता में? बहुत सस्ता है। आपको चाहिए हो नाश्ता, प्रकट करो अपनी आस्था, फिर आपको दिख जाएगा सही रास्ता। यही बात खासता चाहिए है ना, अकिंचन्य धर्म चाहिए। अकिंचन्य धर्म इतना उदार है, इतना उदार है, यह अकिंचन्य धर्म प्रथमोपशम सम्यक्तु के साथ भी प्राप्त होने के लिए तैयार है, क्षायोपशम सम्यक्तु के साथ भी प्राप्त होने को तैयार है। यदि आप क्षायिक हैं तो बहुत बड़े हैं, आदर्श हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि को भी वह प्राप्त होने को तैयार है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदि ये दश धर्म किसी भी हालत में हमारे लिए प्राप्त होने को तैयार हैं। क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन तो है पंचम काल में, औपशमिक सम्यक दर्शन तो है ही पंचम काल में। ये औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन दो अगर साथ में हैं तो आपके पास एक दोष नहीं है। कौन सा? तीन दोष में से एक दोष मिथ्यात्व दोष नहीं है। अब मिथ्यात्व दोष एक चला गया, अब कौन सा रह गया? अज्ञान। अज्ञान दोष कब तक रहेगा मालूम? केवल ज्ञान जब तक प्रकट नहीं होता तब तक जीव अज्ञानी। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही जीव ज्ञानी बनता है। ये अज्ञान प्रत्यय क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ, क्षायिक चारित्र के साथ भी है। पहले गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक जीव को छद्मस्त कहा है, और छद्मस्त के पास छद्मस्तता क्यों है तो अज्ञान के कारण से है। जब तक जीव अज्ञानी है, केवल ज्ञान प्रकट नहीं करता, अनंत ज्ञान की शक्ति को प्रकट कर नहीं लेता, तब तक वह छद्मस्त है। छद्म यानी छद्म मायाचार, छद्म यानी मायाचार, छद्म यानी कुटिल, छद्म यानी अज्ञान। जब तक जीव के पास अज्ञान होता है उस वक्त आसपास के और दोष पाए जाते हैं। वह यदि प्रथम गुणस्थान में है अज्ञान के साथ तो देखो वहां मिथ्यात्व दोष भी है उस अज्ञान के साथ में, असंयम दोष भी है उस अज्ञान के साथ में। और यदि सम्यक दृष्टि बन जाए तो वह अज्ञान कुछ आदर्श बन गया, वह अज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में कन्वर्ट हो गया, पर क्षायिक ज्ञान के रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ। क्षायिक ज्ञान के रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ, सम्यक दर्शन आया, इसलिए वह अज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं रहा, अब सम्यक ज्ञान हो गया। वह सम्यक ज्ञान हो गया, अब वही सम्यक ज्ञान क्षायिक बनने की यात्रा कर रहा है, वही सम्यक ज्ञान यात्रा कर रहा है और दो को संभाल रहा है, दो गुणों को प्रकट किया है। ये दोनों गुण उसके अचेतन हैं। एक क्षायिक सम्यक दर्शन हो या क्षाउपशमिक सम्यक दर्शन हो, उपशम सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन अचेतन गुण है आत्मा का। इसको किसने प्रकट किया? ज्ञान ने ही प्रकट किया। सम्यक दर्शन को किसने प्रकट किया? ज्ञान ने ही प्रकट किया। अतत्व श्रद्धान कौन कर रहा था? ज्ञान ही कर रहा था। डर कौन रहा था? मिथ्यात्व छोड़ने डर कौन रहा था? ज्ञान ही डर रहा था। फिर ज्ञान डर रहा है तो वो ज्ञान कैसा? वो तो अज्ञान है। और उस अज्ञान के कारण से हम क्या कहलाए? अज्ञानी। अज्ञान दोष है। इस दोष के कारण से हम दोषी हैं। किस कारण से दोषी हैं? अज्ञान के कारण से दोषी हैं। और अज्ञानी डरता है। ये भय भी एक दोष है, एक्स्ट्रा दोष। इसको किसने स्वीकार किया है? ज्ञान ने ही स्वीकार किया है। डरने वाला ज्ञान, मिथ्यात्व करने वाला ज्ञान और सम्यक्तु भी प्राप्त करने वाला ज्ञान, दोषों को त्यागने वाला भी ज्ञान, गुणों को ग्रहण करने वाला भी ज्ञान। गुणवान कौन बन रहा है? ज्ञान ही गुणवान बन रहा है। ज्ञान गुण और दर्शन गुण, ये दोनों गुण आत्मा के भीतर चैतन्य गुण माने गए हैं, दो ही। बाकी सब अनंत गुण अचेतन हैं। अद्भुत है, अद्भुत है। आत्मा तो चेतन और उसके भीतर गुणों की अपेक्षा से दो गुण चेतन और बाकी सब अचेतन। उनको अचेतन क्यों कहा? वो पुद्गल हैं क्या? फिर पुद्गल नहीं, वे अनंत गुण भी जीव ही हैं, किंतु वे जीव के अंदर पहले नहीं थे, अब हैं। कौन? जो भी अनंत गुण हैं आत्मा के भीतर, पहले नहीं थे, अब हैं। तो पहले कौन थे? दो गुण थे, दर्शन गुण और ज्ञान गुण। ज्ञान गुण जानने का काम करता था, दर्शन गुण पदार्थों को देखने का काम करता था। ये दोनों ही चैतन्य गुण की परिणति। चेतना गुण क्या है? ज्ञानोपयोग की परिणति को चैतन्य गुण कहा है। ज्ञानोपयोग निरंतर जानने देखने का जो काम कर रहा है, उपयोग परिणमनशील है, इस परिणमनशील परिणति को चैतन्य कहा है। चेतना का अर्थ होता है चेतयति, संवेदयति। चेतयति संवेदयति, जो संवेदनशील होता है उसको चेतना गुण कहते हैं। और जाने बिना संवेदनशील होना संभव नहीं। जानने का काम करने वाला तो ज्ञान है, परंतु संवेदन करने वाला ज्ञानोपयोग की परिणति, वो जो उपयोग जिसमें लग रहा है, उस पर्याय, जिस पर्याय को वो जन्म दे रहा है, वो वर्तमान की पर्याय परिणति चेतना गुण है। ज्ञानोपयोग परिणमनशील है और यह परिणमनशील ज्ञान पर पदार्थों को या आत्मानुभूति को जब वह संवेदनशील दृष्टि से जानता है तो अपने उपयोग की परिणति के द्वारा जानता है। वो उपयोग की परिणति चेतना है। ज्ञान एक जानने की शक्ति का नाम है। आ रहा है वही खोल रहा हूं, जो समझ में नहीं आ रहा है वही खोला जा रहा है। समझ में क्यों नहीं आ रहा है मालूम, कि हमने आज तक आत्मा चेतन है और उसके भीतर रहने वाले सारे गुण चेतन, ऐसी धारणा बना रखी है। लेकिन जरा विचार करो, तर्क करो, ज्ञान और दर्शन को छोड़ो, जरा बाजू रखो, अन्य गुणों में से कोई एकाध गुण उठा लो, उसके संबंध में हम तर्क और चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। एक ले लो कोई भी, सम्यक दर्शन पास का ही ले लो, चारित्र पास का ही ले लो, चारित्र अचेतन गुण है। क्यों अचेतन गुण है इसको सिद्ध करना है, अभी करेंगे। सम्यक तो अचेतन गुण है, क्यों अचेतन गुण है इसको सिद्ध करना है, अब भी करेंगे। महाराज कैसे? सम्यक दर्शन से पूछो, तुम जानते हो क्या? यदि जानते हो तो चेतन हो, और नहीं जानते हो तो अचेतन हो। चारित्र से पूछो, हे चारित्र, ये सब क्या है दुनिया, ये क्या है ये पदार्थ, जानते हो क्या? चारित्र कहता है नहीं 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 नहीं, इतना भी नहीं कह सकता नहीं 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 नहीं, इसलिए अचेतन। ये इसका उत्तर है। चारित्र हमें उत्तर नहीं देता, सम्यक दर्शन हमें उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन ज्ञान से कुछ भी पूछो वो जान करके उत्तर दे देता है। जो हमारे लिए उत्तर देता है वो चेतन गुण, और जिनसे उत्तर नहीं मिल सकता वो अचेतन गुण। बस इतना निश्चित कर लेना, पूर्व की धारणा छूट जाएगी, नई धारणा बन जाएगी। और भी गुण है, उस संबंध में भी सोचो। अंतराय कर्म के अभाव में जीव को कौन सा गुण प्रकट होता है? अनंत बल, अनंत बल प्रकट होता है। बल, वह अनंत बल जानता है क्या? हे अनंत बल, क्या जानते हो? मौन, उत्तर ही नहीं आता उससे। लेकिन ज्ञान से पूछो, हे ज्ञान, क्या जान रहे हो? मैं तो सब कुछ जान रहा हूं, तुम क्या पूछ रहे हो? जो पूछोगे सब जान करके बता दूंगा। लेकिन अनंत बल ये नहीं कह सकता कि जो तुम जो कुछ भी पूछोगे मैं जान करके समझा दूंगा, बता दूंगा, ये नहीं कह सकता। अनंत बल है, बल अनंत। वो किसका बल है? आत्मा का। वह बल, अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा किस कर्म के उदय में विनष्ट था? अंतराय कर्म ने उस अनंत बल को घेर रखा था। ऑपरेशन हो गया अंतराय कर्म का, ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया गया। अंतराय कर्म ने जैसे ही जगह छोड़ दी, वैसे ही अनंत बल प्रकट हो गया आत्मा के भीतर। परंतु अंतराय कर्म का ऑपरेशन करने वाला बल है या ज्ञान है? ज्ञान है। ज्ञान ने ऑपरेशन किया। अनंत बल को किसने जन्म दिया? ज्ञान ने जन्म दिया। ज्ञान ने जाना, ज्ञान ने समझा कि ये अंतराय कर्म है और मेरे पास अनंत बल भी है। वह बल इसी अंतराय कर्म के उदय के कारण से घात हुआ है और मुझे अंतराय कर्म का ऑपरेशन करना चाहिए। निर्णय ले लिया ज्ञान ने। पर बल निर्णय ले सकता है? बल थोड़ा बहुत पहले भी था, अंतराय कर्म के क्षौक्षम से थोड़ा सा बल आत्मा में था, और उस बल के आधार से उसका सदुपयोग करते हुए ज्ञान पीछे पड़ा। किसके पीछे पड़ा? जो हमारे बल को, अनंत बल को घात कर रहा है उसके पीछे पड़ा, उसका ऑपरेशन करने के लिए पीछे पड़ गया, और उसने अंतराय कर्म का ऑपरेशन किस गुणस्थान में जाकर के ज्ञान ने ऑपरेशन कर दिया? बारहवीं गुणस्थान में, बारहवीं गुणस्थान में जाकर ज्ञान ने ऑपरेशन किया। अंतराय कर्म का ऑपरेशन नीचे के गुणस्थान में नहीं हो सकता। ज्ञानावरण कर्म का ऑपरेशन नीचे नहीं हो सकता। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, ये तीन कर्म घाती कर्म है ना, जीव के अनुजीवी गुणों को घात करते हैं। ये घाती कर्म तीन तो बारहवें गुणस्थान में नष्ट होते हैं, किंतु इन तीनों कर्मों का ऑपरेशन करने से पहले किस कर्म का ऑपरेशन करना पड़ेगा? मोहिनी कर्म का। और मोहिनी कर्म ने तो अपना साम्राज्य जमा रखा है। हाँ, पुरुषार्थ कौन नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पुरुषार्थ करने वाला कौन? ज्ञान ही पुरुषार्थ करता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ किसने किया? ज्ञान ने किया, क्योंकि ज्ञान ही गड़बड़ था। रागादि भाव, मिथ्यात्व भाव, अज्ञान भाव, असयम भाव, इन सब को करने वाला, इन दोषों को करने वाला कौन है? ज्ञान है। ज्ञान ही गड़बड़ था। और ज्ञान जब अपने को समझ लेता है कि मेरा लक्षण दोष नहीं, मेरा लक्षण गुण है, दोष मेरा लक्षण नहीं, गुण मेरा लक्षण, असयम दोष है वो मेरा लक्षण नहीं, रागादि भाव दोष है वह मेरा लक्षण नहीं, मिथ्या तो दोष है वह भी मेरा लक्षण नहीं, अज्ञान दोष है वह अज्ञान भी मेरा लक्षण नहीं, और मैं अज्ञानी हूं। ज्ञान कहता है मैं अज्ञानी हूं, कब से? अनादिकाल से। और मैं अज्ञानी होता हुआ भी मैं ज्ञान, हमने ज्ञान ले लिया, सत्संग मिला, कोल्हापुर में मिला, सम्यक दर्शन का द्वार खुला, और खुलने से मैं अज्ञान, मिथ्या ज्ञान था, सम्यक ज्ञान के रूप में मैं कन्वर्ट हो गया, मेरे लिए एक पदवी मिल गई। पहले मिथ्या ज्ञान की पदवी थी, अब मुझे सम्यक ज्ञान की पदवी प्राप्त हो गई। अब मुझे सम्यक ज्ञान की यह पदवी छूटने वाली नहीं है, परंतु मेरी क्वालिटी बदलती जाएगी, क्वालिटी बदलती जाएगी, और जब क्वालिटी उत्कृष्ट बनेगी क्वांटिटी सब समाप्त हो जाएगी। ओनली नॉलेज, केवल ज्ञान, मैं अकेला रहूंगा उस समय, मेरा अस्तित्व रहेगा, मैं अकेला रहूंगा, मेरे साथ कोई और साथी नहीं रहेंगे। अभी तो मेरे पास मति ज्ञान साथ चल रहा है, श्रुत ज्ञान साथ चल रहा है, अवधि मन परे, ये चार ज्ञान साथ चल रहे हैं, लेकिन ये साथ चल करके क्या फायदा? ये छोटे छोटे हैं, मेरे अंदर अनंत को जानने की क्षमता है, लेकिन मैं सीमित को जान रहा हूं, ये मेरा दोष है। और यह दोष क्यों है? क्योंकि मैं सदा हमेशा अनादिकाल से मोही बना रहा, मोहनी कर्म के उदय में मैं हर्ष विषाद करता रहा, उस हर्ष विषाद के काल में मेरी अनंत जानने की शक्ति को आच्छादित करने वाला ज्ञानावरणी कर्म पांच प्रकार से आता रहा। मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी, मन परि ज्ञानावरणी, केवल ज्ञानावरणी, पांच प्रकार से पांचों दिशा से मुझे वे आक्रमण करते रहे। ये कर्म आकर के मैं आक्रमित होता रहा और वे आक्रमण करते रहे मुझे। ज्ञान जान रहा है मैं दूसरों से आक्रमित हो रहा हूं, और ये भी जान रहा है ज्ञान कि मैं आक्रमित भी हो रहा हूं, और आक्रमित होने के कारण से मैं अपनी शक्ति को खो रहा हूं, मैं कमजोर पड़ रहा हूं। मेरे जानने की जो क्षमता है वो अनंत नहीं बन पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही है? इसमें एक ही कारण मेरा दोष ये है कि मैं कषाय के उदय में राग द्वेष करता हूं, और ये ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म आकर के मेरे लिए आक्रमण करते हैं, इस वजह से मैं दुखी हूं। ज्ञान दुखी है। दुख की अनुभूति करने वाला कौन? ज्ञान। सुख की अनुभूति करने वाला कौन? अनंत बल जो प्रकट हो गया 13वें गुणस्थान में, उसका अनुभव लेने वाला कौन? ज्ञान ही है। आठो कर्म नष्ट हो गए, नष्ट होने से आठ गुण प्रकट हो गए। चेतन है कि अचेतन? वो चेतन। एक दर्शन गुण को छोड़ो और एक ज्ञान गुण को छोड़ो। दर्शनावरणी कर्म के क्षय से दर्शन गुण प्रकट हुआ, ये चेतन है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से ज्ञान गुण प्रकट हुआ, ये चेतन है। दो छोड़ो, बाकी कितने हैं? आठ में से दो छोड़ो, छह हैं। छह गुण अचेतन हैं, दो गुण चेतन हैं। दर्शन गुण कहता है मैं दिखा देता हूं ये छह गुण क्या है। ज्ञान गुण कहता है मैं जानता हूं, जना देता हूं, हे आत्मा चिंता मत करो, मैं आपको ज्ञान करा देता हूं कि ये छह गुण क्या हैं। और संवेदन करना हो तो करो, कौन करो? ज्ञान ही करेगा संवेदन। उन छह गुणों को दर्शन गुण जानेगा, ज्ञान गुण उन छह गुणों को संवेदन करेगा। ये अनंत बल है, ये सूक्ष्मत्व गुण है, ये अवगाहनत्व गुण है। इस प्रकार से सभी गुणों का भोक्ता, उपभोक्ता कौन है? ज्ञान ही है। सभी गुणों का उपभोक्ता ज्ञान है। रहस्य समझ में आ गया पूरा? सम्यक दर्शन। हाँ हाँ, ज्ञान को मिल गया है, ये गिफ्ट स्वतः ने प्राप्त कर लिया है पुरुषार्थ पूर्वक। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये दोनों जो आए हैं ज्ञान के पुरुषार्थ से ही आए हैं। ज्ञान ने क्या पुरुषार्थ किया? मोहनी कर्म को मंद कर दिया, अनंत अनुबंधी को मंद कर दिया। ज्ञान ने बड़ा काम किया, मोहनी कर्म मंद हो गया तो लब्धियां बनी, लब्धि बनने से जगत छोड़ दिया। दो ने, अनंत अनुबंधी ने और दर्शन मोहनी कर्म ने, दोनों ने जगत छोड़ दिया। तो स्वतः के पुरुषार्थ से सम्यक ज्ञान गुण प्राप्त हो गया और सम्यक दर्शन गुण भी प्राप्त हो गया। किसने प्राप्त कर लिया? ज्ञान ने प्राप्त किया पुरुषार्थ ज्ञान का, और सम्यक ज्ञान खुद ही सम्यक ज्ञान के रूप में ढल गया। और पुरुषार्थ किसका किया? मोहिनी कर्म को हटाने का पुरुषार्थ किया। बड़ा रहस्य है, केवल ज्ञानी के वचनों में ये जो सिद्धांत दर्शाया गया है, संसारी प्राणी को इसको जानकर बाहर का त्याग कर अपना बनना चाहिए। हे भव्य जीवात्मा, तो अपना नहीं बनता है तो मत बन, लेकिन खुद का तो बन। किसी दूसरे का नहीं बनता है मत बन, लेकिन खुद का तो बन। जब तू खुद का बनेगा, खुदा बन जाएगा। जो आत्मा खुद का नहीं बनता वो खुदा नहीं बन सकता, इतना निश्चित है। समय हो गया है। हाँ, मिथ्या ज्ञान तक, मिथ्या ज्ञान पहले गुण स्थान में मात्र ज्ञान के ऊपर वह प्रभाव डाल सकता है, दूसरे आदि गुण स्थानों में नहीं। मिथ्या तो प्रकृति, दूसरे गुण स्थान में कोई भी दर्शन मोहिनी कर्म का उदय नहीं है, तीसरे गुण स्थान में मिश्र प्रकृति का उदय है जो दर्शन मोहिनी कर्म है। तीसरे गुण स्थान में जीव पहुंचेगा तो उस जीव को यानी ज्ञान को, ज्ञान अगर तीसरे में पहुंच गया तो वहां पर मिश्र प्रकृति के उदय में मिश्र परिणाम होंगे, यानी ये भी और वो भी, वो भी और ये भी, इस प्रकार के परिणाम, मिश्र परिणाम। दही गुणवत्त, दही गुणवत्त। आज आकिंचन्य धर्म है, आकिंचन यानी त्यागना। हे ज्ञान, हे भव्यात्मा का ज्ञान, जाग जा, जाग जा, जाग जा, जाग जा, तेरा कुछ भी नहीं है, सब छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, अकिंचन्य बन जा, अकिंचन्य बन जा, अकिंचन्य बन जा, तेरा कुछ भी नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं है, तेरा वैभव अंदर है, अंदर है, अंदर है, तू ही वैभवशाली है, जगत का वैभव नश्वर है, नश्वर है, उसको त्याग दे, खुद के वैभव को पाले, हे सुरागी जिंदगी, जिंदगी बना ले।